તારીખ 27/12/1992 શ્રી દૂરદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 638-645 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 241
પૃષ્ઠ સંખ્યા 638 दूसरा प्रश्न है दृष्टि तो फेरना है ना जो उल्टी दृष्टि है वो तो बदल कर सम्यक दृष्टि बनाकर ना भी नहीं ऐसा प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने वाले को अहमपना पर्याय में रहता है यह बात उत्तर देने के पहले ख्याल में रखी गई है क्या? इसलिए दृष्टि फेरना चाहिए ये बात ठीक होने पर भी हाँ दृष्टि फेरनी चाहिए ऐसा उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या है? कितने प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न पूछने वाले हमारी बात सही है या सही नहीं है इसका उत्तर चाहते हैं और बात सही होते हुए भी बात सही है ऐसा अनुकूल उत्तर नहीं मिलता है ऐसा भी बनता है। इसमें यही कारण है कि बात सही होने पर भी यथार्थता नहीं होती। क्या? जैसे शास्त्र का किसी भी प्रकरण किसी भी गाथा का अर्थघटन सही होने पर भी अयथार्थता हो सकती है। अर्थघटन गलत हो तो यथार्थता हो ही नहीं सकती। किंतु ऐसा नहीं है कि अर्थ सही हो इसलिए यथार्थता हो। अर्थ सही होना एक बात है यथार्थता होना ये दूसरी बात है। ठीक इस तरह दृष्टि तो फेरनी चाहिए मिथ्या दृष्टि है वो बदल कर सम्यक दृष्टि होनी चाहिए लेकिन प्रश्न पूछने वाले को ये दृष्टि बदलने पर जो पर्याय पर का जो वजन है वो यथार्थ नहीं है। अनादि से पर्याय बुद्धि तो है ही और पर्याय पर वजन जाता है तो पर्याय बुद्धि तो दृढ़ हो जाएगी। दृष्टि तो सही पर्याय ही है और क्या है? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो पर्याय ही है और क्या है? इसलिए जिनागम में जो भी उपदेश बोध है ये सही सारा बोध जो है उपदेश का जो बोध है वो उपदेश पर्याय को लक्ष्य में लेकर के दिया गया है और उपदेश ग्रहण करने वाला जो मुमुक्षु है उनकी दृष्टि जब पर्याय पर है तो उनको उपदेश बोध ग्रहण करते समय सतर्क रहना चाहिए जागृत रहना चाहिए कि कहीं मेरी पर्याय दृष्टि तो दृढ़ नहीं हो रही है। ये इस विषय की सूक्ष्मता है। पर्याय के लक्ष्य में लेकर के उपदेश देते हैं कि पर्याय में ऐसा कर्तव्य है वैसा नहीं अकर्तव्य है दो प्रकार अस्ति नास्ति से उपदेश चलता है। और पर्याय का कर्तृत्व मिटाना, यही तो मोक्ष मार्ग का मुख्य लक्षण है कि जहां पर्याय का कर्तृत्व नहीं होता। तो कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश चले और पर्याय का कर्तृत्व नहीं रखना, वो बात हो गए तो कोई विरोध तो नहीं होना चाहिए, अविरोध बात तो होनी चाहिए। तो ये इस ढंग से उत्तर दे रहे हैं सुभानी जी। तो दृष्टि फेरनी है उपदेश बोध के अनुसार। वास्तव में दृष्टि पर वजन ही नहीं होना चाहिए, अपने स्वरूप पर पूरा पुरुषार्थ का जोर लगना चाहिए। किस तरह कि मैं तो खुद ही दृष्टा हूं, क्या कैसे जोर लगना चाहिए कि मैं तो खुद ही दृष्टा हूं। इस भाव में मैंने इस प्रकार के पुरुषार्थ का जोर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर जाता है तो फिर मुझे दृष्टि नहीं फेरनी है। क्या है, मुझे दृष्टि नहीं फेरनी है क्योंकि मैं तो दृष्टा हूं। दृष्टि का कार्य की चिंता मुझे करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उपदेश बोध के अनुसार तो दृष्टि फेरनी चाहिए, लेकिन स्वरूप के पुरुषार्थ में, स्वरूप में अहमपना करते वक्त में दृष्टि फेरने का भाव गौण हो जाता है, यानी उसका कोई विचार विकल्प करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा, देखो मैं खुद ही दृष्टा हूं, इस भाव में दृष्टि नहीं फेरना है, लेकिन मैं खुद ही दृष्टा हूं ऐसे पुरुषार्थ के बल में दृष्टि स्वयं फिर जाती है, फेरनी नहीं है लेकिन फिर जाती है। दृष्टि फेरना है उसमें दृष्टि फेरने का कार्य का कर्तृत्व आता है, और मैं खुद ही दृष्टा हूं ऐसे पुरुषार्थ में दृष्टि फिर जाती है, फेरनी पड़ती नहीं, फिर जाती है। तो में अंतर है, एक में कर्तृत्व आता है, एक में सहज कार्य होता है। वर्तमान में ही कृतकृत्य हूं, इसमें कुछ करना नहीं है। मेरे स्वरूप में मैं कृतकृत होने से मेरे स्वरूप में तो कुछ करना है ही नहीं, लेकिन ऐसा मैं कृतकृत्य हूं ऐसा भाव तो होता है परिणमन में। तो परिणमन में ऐसा भाव होने से पर्याय स्वयं ही सम्यक हो जाती है, ठीक हो जाती है, कुछ फिर कुछ कर्तृत्व का बोझा उठाना पड़ता नहीं है। तो ये जो पद्धति है वो सिर्फ जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। कर्तृत्व के में तो मूल में क्या है कि पर्याय का कर्तृत्व जहां तक रहता है और वो तीव्र हो जाता है तो पर्याय के विषयभूत जो अन्य द्रव्य है उसका कर्तृत्व आए बिना रहता नहीं। क्या, पर्याय का कर्तृत्व तीव्र होता है तो वो कर्तृत्व, पर्याय का कर्तृत्व तीव्र होने से जो पर्याय के विषयभूत अन्य पदार्थ है उसमें कर्तृत्व रोक सकते नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए मूल में पर्याय का कर्तृत्व को छोड़ दें या मिटा दें तो पर का कर्तृत्व सहज रूप से होगा ही नहीं, ऐसी बात है। हाँ, ये भी पर्याय की बात। हाँ, कर्तृत्व जहाँ तक स्वभाव के बल पर नहीं आवे वहां तक कर्तृत्व रहेगा। इसलिए तो ये बात शुरू में इसलिए लिया कि जितना भी उपदेश बोध है अपना कल्याण करना है अकल्याण नहीं करना है, वो तो कर्तव्य अकर्तव्य का जितना भी प्रकरण है विस्तार से, ऐसे भावों में मुमुक्षुओं को जागृत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि मुझे मेरा पर्याय का कर्तृत्व डर नहीं होना। पर्याय का मैं पर्याय के कर्तृत्व की बात उनको तो नहीं है, लेकिन उनको तो भावना की ये बात है। पर्याय का कर्तृत्व एक बात है, भावना दूसरी बात है। ज्ञानी को भावना होती है, मुमुक्षुओं को भी भावना होती है, लेकिन भावना होवे इसलिए कर्तृत्व होवे ही ऐसा जरूरी नहीं है। कर्तृत्व कहाँ होता है वहां कहाँ कर्तृत्व नहीं होता है, वो जरा विचारणीय प्रश्न है। हाँ, बिना कर्तृत्व
बनी
ऐसा होता है, बिना कर्तृत्व भी ऐसा भाव होता है और कर्तृत्व से भी ऐसा भाव होता है। यही तो अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में, यही तो अंतर है। इसलिए ये विषय थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है कि सारा उपदेश बोध है वो तो पर्याय विषय चला है, जिनागम में भी और अन्य मत में भी। लेकिन जिनागम में विशेषता एक और है कि अकर्तृत्व भाव से पर्याय का कार्य सहज होवे, ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा एक विज्ञान जिनागम में मिलता है जो और कहीं जगह नहीं मिलता, एक विशेषता है। तो हर मुमुक्षुओं को अपने पर्याय को सुधार करना है, अवगुण को निकालना है, गुण को प्रकट करना है पर्याय में से, लेकिन पर्याय बुद्धि रख कर के ये उपदेश कितना भी दृढ़ करे तो भी सही सम्यक सुधार होने वाला नहीं है। कैसे जहाँ तक वो पहचान में नहीं आया तो ज्ञानी की पहचान ही सही नहीं हुई। ज्ञानी की जो पहचान, ज्ञानी तो निमित्त है, अपने पहचान करने की योग्यता में ज्ञानी तो निमित्त है। तो निमित्त की अंतरंग अकर्तृत्व दशा जहां तक हमने नहीं पहचानी, हमें ज्ञानी को नहीं पहचाना, ये बात है। उसमें तो क्या वो उसका कर्तृत्व तो देखते हैं तो वो ज्ञानी है, रहा है कहां, वो तो ज्ञानी ही नहीं रहा, ऐसी बात है। कर्तृत्व तीव्र नहीं होता है, क्योंकि ये पर्याय करूं वो पर्याय करूं ऐसा नहीं रहता है। पूर्णता होने की भावना में सहज पर्याय जो है वो सहज सहज काम करने लगती है। जो मुमुक्षु की भूमिका की अवस्थाएं हैं वो अवस्था सहज सहज उत्पन्न होने लगती है, ऐसा बनता है। कर्तृत्व का जोर नहीं आता
उसकी खोज के परिणाम में भी कर्तृत्व नहीं पड़ता।
हाँ, फिर जब स्वरूप लक्ष्य में आता है तो स्वरूप तो अक्रिय निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय स्वरूप लक्ष्य में आने से फिर कर्तृत्व का बोझा एकदम हट जाता है कि मेरे में कुछ करना नहीं है, मैं कृत करती हूँ, स्वरूप से ही मैं कृत करती हूँ, कुछ करना कराना मेरे में नहीं है। तो सभी गुणों की पर्याय जो होती है, सहज होती है, उसका ज्ञान रहता है, उसमें कर्तृत्व का जोर नहीं आता। ऐसा तो वो लक्ष्मण स्वरूप आने से फिर परिस्थिति बदल जाती है। यहाँ पर दृष्टि फेरना है कि नहीं फेरना है, कि कर्तृत्व भाव से तो दृष्टि नहीं फेरना है, सहज दृष्टि फिर जाती है जब स्वरूप का आश्रय होता है तब। तर्क तो ऐसे करेंगे कि फिर स्वरूप का आश्रय तो करना नहीं, कि करना क्या, अपना स्वरूप को अपने रूप में जानने में आता है तो ऐसा मैं हूं वो सहज स्वरूप आश्रय है, उसमें भी कर्तृत्व से तो कोई काम होने वाला नहीं है, ये कृत्रिमता है। पर्याय का कर्तृत्व स्वयं कृत्रिमता है, और कृत्रिमता और सहज अकृत्रिम स्वभाव दोनों में मेल नहीं है, सुसंगतता नहीं है, विरुद्ध है, विसंगतता है। इसलिए सहज स्वभाव सहज रूप से श्रद्धा ज्ञान में रहे, ऐसा सहज श्रद्धा ज्ञान का जो परिणमन, यही सहज स्वभाव से अनुकूल है, सुसंगत है, ऐसा परिणमन होना चाहिए। और ऐसा सहज परिणमन हुए उस ढंग से कार्य पद्धति होनी चाहिए, कर्तृत्व भाव वाली कार्य पद्धति कहीं भी होनी नहीं चाहिए।
परोक्षपना
में तो क्या है कि विचार ही बंद नहीं होता, विकल्प ही बंद नहीं होता, और विकल्प का कर्तृत्व अनादि से चला आ रहा है, और प्रत्यक्षता में तो कोई विकल्प करना ही नहीं पड़ता। जो स्वरूप प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वरूप प्रत्यक्ष है, तो उसका कोई विकल्प करना ही नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे पर्याय करूं, वैसे पर्याय करूं, ये बात ही खत्म हो जाती है। तो और प्रश्न उठाया तीसरा, कि परिणति अंतर में अभेद रहती है, इसलिए आप साधक है, ये 639 है, 638 को पूरा हुआ है, 639। परिणति अंतर में अभेद रहती है इसलिए आप साधक है। उत्तर, कि पर्याय की अपेक्षा से मुझे साधक कहो तो कहो, वैसे मैं तो न साधक हूं न बाधक हूं, प्रमत अप्रमत में नहीं। वो छठी गाथा वाली बात आ गई, न्यायिक स्वभाव में साधक बाधक पड़ा है ही नहीं। ये पर्याय का धर्म पर्याय में है, पर्याय की प्रधानता से साधक कह सकते हो। वास्तव में मेरा स्वरूप से मैं साधक भी नहीं और मैं बाधक भी नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं, अनादि अनंत मेरा स्वरूप जैसा है वैसा है, मुझे कोई साधक बाधक पना लागू पड़ता नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से मुझे साधक कहो तो कहो, तो साधक पना तो बता दिया। वो तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बात उतनी विलक्षण रूप से प्रसिद्ध हुई है कि परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो ज्ञानी की परीक्षा करते हैं लोग, ज्ञानी है कि नहीं है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, ऐसे इनका तो दृष्टि का बल पर इतना दृष्टि प्रधान ही कथन आया है बातों में कि परीक्षा करने की जरूरत न रहे। यो भवतो मुसाफिरी है, अब तो आखिरी मुसाफिरी है। ठीक है, क्या बहुत दृढ़ता थी, बहुत दृढ़ता क्या, वो तो ऐसे जो एकावतारी पुरुष होते हैं उनका पुरुषार्थ ऐसा होता है कि इस भव में ही मैं मेरे काम को पूरा कर लूं, दूसरा भव भी क्यों, इसका यही कारण है कि जब मेरे स्वरूप में मेरी एकाग्रता होती है, हो सकती है, और ये स्वयंवश परिणाम है, परवश परिणाम नहीं है, स्वाधीन परिणाम है, तो मैं क्यों पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाऊं। तो उनका प्रयास तो पूर्ण होने का ही रहता है, पूर्णता की भावना तो शुरुआत से है, और तो पुरुषार्थ भी ऐसा चलता है, फिर भी वस्तु व्यवस्था तो मिटती नहीं है या बदलती नहीं है, तो कुछ कमी रह जाती है, तो एक भव बीच में देवलोक का हो जाता है, उतनी बात है। लेकिन उतना पुरुषार्थ जोर से चलता है कि वो पूरा करने की तैयारी में आते हैं, फिर भी एक भव रह जाता है, तो इसकी कोई गिनती फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सही बात है। हाँ, दो से चार सागर तक अब जाते हैं वैमानिक देव में, अभी के इस काल के सम्यक दृष्टि जो वैमानिक देव में जाते हैं उनकी स्थिति कम से कम दो सागर की और अधिक से अधिक तीन चार सागर की रहती है। तो गृहस्थी को तो थोड़ा अशुद्ध भी रहता है, इतना गृहस्थी को इतना सुपरिणाम तीव्र नहीं आता है, और अशुभ का भी बीच में योग रहता है, तो इनका अघाती का बंध उतना लंबा नहीं पड़ता जितना शुभ में रहने वाले को पड़ता है, उतना फर्क पड़ता है। तो शुभ बढ़ने से अघाती का भी स्थिति लंबी पड़ जाती है, और बीच में अशुभ आ जाने से अघाती की स्थिति कम हो जाती है। हम देखिए क्या नुकसान हुआ उसमें, नुकसान हुआ के लाभ हुआ, अशुभ से लाभ हो सकता है क्या? ये गणित ही दूसरी जात का है, वो तो सब सहज है, शुभ भी सहज अशुभ भी सहज। कोई कल की चिंता ज्ञानी कभी करते नहीं है, वो तो वर्तमान पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, उतना लगे हुए हैं कि उनको कल की सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझो, ऐसा वो अपने वर्तमान पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, फिर जो होना है सो होता है, और पर्याय जिस काल में जो होने वाली है वो होकर रहेगी। इस सिद्धांत को वो अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो कोई पर्याय में उलट फेर करना, ये दृष्टि मिथ्या है, ये दृष्टि ही मिथ्या है, अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ऐसा विकल्प उनको आता नहीं है। वो तो सहज लग गया कि यह भव तो मुसाफिरी है, और अब तो आखिरी मुसाफिरी है, ऐसा जो लग गया तो बता दिया। गुरुदेव श्री के लिए मेरे हृदय में क्या है, यानी मुझे गुरुदेव की कितनी महिमा है, कितनी भक्ति है, उसको चीर कर कैसे बताऊं? खोल करके बता तो नहीं सकते, यह तो मेरा ज्ञान ही जानता है। मैंने बहुत भक्ति थी, अनंत काल की विटंबनाएं खत्म होने का एक अपूर्व निमित्त मिला, तो उनकी भक्ति की भी कोई हद रहती नहीं है, बेहद भक्ति थी। अनंत तीर्थंकरों से भी मेरे लिए तो गुरुदेव श्री अधिक है, तो एक तीर्थंकर नहीं, लाख करोड़ अरब तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है। ऐसी इतनी भक्ति आ गई तो ऐसा सहज होता है, तो उसको कैसे बताएं? ये कोई बताने या दिखाने की चीज नहीं है।
नहीं,
गुणस्थान की गिनती नहीं होती। क्या जैसे कोई दानवीर होता है, क्या कि जिसको दानवीर कहने में आता है, वो दान देते वक्त गिनती करता है क्या कि इतना दे दूंगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा? हाँ, ऐसा गिनना तो लोभी का काम रहता है। किसका काम रहता है कि ऐसी गिनती करना? ये लोभी का काम रहता है कि मैं इतना दे दूं फिर मेरी जो अनुकूलता है कैसे बनेगी, फिर मैं प्रतिकूलता में आ जाऊंगा तो क्या होगा। ये दानवीर को देते वक्त विकल्प ही नहीं आता, ऐसे भक्तिमंत को गिनती का विकल्प नहीं आता कि ये कितने गुण स्थान में है। ये गिनती भक्ति में कभी होती नहीं है। मैंने भक्ति के भाव कोई तोल जोक से नहीं होता कि जितना गुण स्थान इतना तोल करूं मैं, ज्यादा गुण स्थान हो तो ज्यादा तोल करूं, कम गुण स्थान हो तो कम तोल करूं। ये कोई करणानुयोग का विषय थोड़ा है, भक्ति कोई करणानुयोग का विषय है या बहुमान का विषय है? ये बहुमान का विषय है। और अपना हित भाव कितना हुआ? अनंत हुआ, पूरा अनंत हुआ ना। तो जब हित पूरा मिले और भक्ति हम थोड़ा उसमें कांच छाट के करें, हाँ, ये कोई बात वाजिब है क्या? बात ही बराबर नहीं है। जब हित पूरा होता है तो भक्ति भी पूरी आएगी, सीधी बात है। हमको पढ़ना नहीं है, मुनि होना है। पढ़ने का बंद कर दिया था, हमको तो पढ़ना छोड़ दिया है, तो मुनि हो जाएंगे।
ऐसे बोल
है?
कहने वाले
हाँ थे। हमको तो मुनि होना है। जिसको मुनि होना है वैसे बात बताते नहीं है, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा बोलने वाला भी होता है, ज्यादा बोल देते हैं। मुनि होना कोई मामूली बात तो नहीं है, फिर भी कोई बोलने में ज्यादा बोलता है तो बोल देता है। ये बात इनके मित्र ने कही थी। हाँ, बोलता है ज्यादा वो। तो क्या है कि सुगानी जी सोनगढ़ में थे, हमारे कमरे पे चाय पानी नाश्ता के लिए शकर के वो ले गए थे खींच करके। भी आजकल क्या करते हैं कि हम तो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, हमको पढ़ना नहीं, हमको तो मुनि होना है। फेंकता था, बहुत बातें बहुत फेंकता था। बराबर। तो उसने उत्तर दिया उसके सामने कि हमको तो न पढ़ना है न मुनि होना है, हमारे तो कुछ होने का सवाल ही नहीं। मैं तो जो हूँ सो बात खत्म। तो सब बात द्रव्य प्रधान करते थे, पर्याय प्रधान उत्तर नहीं देते थे। होना नहीं होना वो तो बात पर्याय की रह गई, हमको तो कुछ होना ही नहीं है। हम तो जो है सो है, अनादि से अनंत। वास्तव में के वो परिणाम, इनके परिणाम में वही बात थी, बहुत धारा स्वभाव की परिणाम धारा बहुत तेज थी। तो बाद में भी वही बात निकलती थी, फालतू बात वो नहीं करते थे। फालतू बात कोई करते तो भी उड़ा देते थे कि ये क्या हो गया, मैं तू यह वह, ये क्या चलता है, काट देते थे। अपना कोई भी समय है वो फालतू निकल जा रहे, ऐसा नहीं चले। बाह्य कार्यों में मुझे इतनी थकान आती है कि कितने ही दिनों का एकांत मिले फिर भी थकान न उतरे, इतनी एकांत प्रियता है। ये अपने बाह्य कार्य में ये उदय के जो कार्य होते हैं वही बाह्य कार्य है। जो उदय के साथ जो भी परिणाम चलते हैं वो तो विकल्पात्मक ही होते हैं, तो उसमें बहुत थकान आती है। ऐसा कहते थे, उतना थक जाता हूँ, बहुत कंटाला आता है कि कितना भी एकांत मिले। निवृत्ति बहुत चाहते थे, प्रवृत्ति में थे, बहुत निवृत्ति चाहते थे, निवृत्ति के लिए बहुत छटपटाते थे, फिर भी निवृत्ति नहीं मिल रही थी। तो ऐसा उनको लगता था कि अगर मुझे निवृत्ति मिल गई, एकांत मिले, तो मैं थकूं नहीं, एकांत में ही रह जाऊं। कितना भी एकांत मिले, कितना भी समय मिले, मुझे तो बाह्य कार्य में कोई आना जचे ही नहीं। तो सही बात है, उसने वहां स्पष्टीकरण दिया है कि जिनके विकल्प बहुत चलते हैं उनको नींद में विकल्प की थकान उतर कर थोड़ी शांति मिलती है। तो वो जिसको नींद में शांति मिलती है या थकान उतर जाती है, कभी आराम कर लिया, फ्रेश हो गया, तो इसका मतलब क्या हो कि उसका विकल्प बहुत चलता है। तो विकल्प की थकान उतरने में वो जो नींद है वो एक साधन बनती है। लेकिन जिनको इतना विकल्प नहीं चलता है उनको नींद में भी थकान आती है, ऐसी बात है। इसलिए तो मुनिराज की नींद कहाँ रहती है। मुनिराज तो 12 बजे के, रात को 12 बजे के बाद अगर नींद लेवे तो भी, इसके पहले तो कभी नहीं। आधा घंटा, पौन घंटा, थोड़ा, वो भी पूरा नींद में नहीं, आछी नींदर में रहते हैं, एक करवट पर सोए रहते हैं, थोड़ी सी नींद आती है, जागृति बहुत रहती है, फिर वो ध्यान में बैठ जाते हैं। 12 बजे के पहले तो ध्यान में रहते ही है, नींद लेते ही नहीं, बाद में भी उतनी नींद नहीं आती, नींद में भी थकान लगती है। हाँ, नींद में भी थकान लगती है, सही बात है। लेकिन उसका अंदाजा सामान्य जीव को, सामान्य प्राणी को नहीं आता। मुनि दशा का अंदाज वो सामान्य जीव को नहीं आता कि मुनि दशा कैसे होती है। बहुत अलौकिक दशा है कि जिसमें नींद में आराम नहीं है, नींद में थकान है, ये बात है। और ये तीव्र दशा जिसकी होती है, आत्मरस की तीव्र दशा जिसकी होती है वही शुरुआत यहाँ से हो जाती है। साधक पने में ये शुरुआत हो जाती है। हाँ, सोने का कम था, बहुत कम सोते थे। लिखा एक जगह कि वैसे तो 2 घंटा नींद आती नहीं, पर फिर भी हमारा तो जो चलता है उसमें थोड़ी सी नींद आ गई तो ऐसा लगता है अरे क्या नींद आ गई। तो वो क्या सूचित करता है कि नींद कम हो गई थी। हाँ जी,
487, 487।
हाँ ठीक है। अंगत नीचे लिखा है ने, अपनी अंगत बात किया है। रात्रि में निंद्रा सहज कम हो जाती है क्योंकि आराम तो सच्चे स्वरूप में ही है। क्या ये सिद्धपद का स्तुति है ने, समाधान सर्वंग सहज अभिराम है। तो आराम, आराम का स्थान तो स्वरूप में है, आराम का स्थान निंद्रा नहीं है और सोने की जो पलंग पथारी है वो भी नहीं है। सच्चे स्वरूप में है तो उस तरफ की एकाग्रता में निंद्रा तो सहज ही कम हो जाती है, है? जिसको सारे दिन इधर उधर के विकल्पों की थकान बहुत होती है उसको आराम के लिए निंद्रा विशेष आती है। ठीक, ये तो अनुभव सिद्ध है सबों को। लेकिन जिसको इधर उधर करने का कर्तृत्व ही टूट गया उसे थकान न होने से निंद्रा भी कम आती है। जैसे मुनिराजों को अंतर की जागृति के कारण विकल्प की थकान नहीं है तो निंद्रा भी कम है, दृष्टांत भी लिया है। मुझे तो सोते वक्त पहले 2 घंटे नींद नहीं आती, फिर थोड़ी नींद आ जाए तो जगते ही ऐसा लगता थोड़ी आ जाए कि क्या नींद आ गई थी, पीछे नींद उड़ जाती है और यही चलता रहता है। अपना परिणाम बताया है, बताएगा नहीं तो ये नींद में आराम मिले ये कल्पना है। क्या है, नींद में आराम मिलता है वो वास्तव में एक कल्पना है। आराम का धाम जो अपनी आत्मा है, शांत 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 रस का पिंड है, उसको छोड़ करके आराम की कल्पना करना और जगह वो एक भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति है ये। तो गुरुदेव ने जो एकावतारीपना घोषित किया वो वास्तव में ये सब बातें इसमें है, गिनती में, गुरुदेव के ज्ञान में सब गिनती में वो बात आ गई है कि कितनी तीव्र पुरुषार्थ की दशा थी। इसलिए ऐसे बोले हमारे तो 4 भव है, ऐसे करके बोलते थे, वो कंपैरिजन करते थे अपने से, हमारे तो 4 भव है उनको नहीं, एक ही भाव में चले जाएंगे। देवलोक में गए हैं, वहां से निकल करके झपट करेंगे, वो हमारा काठियावाड़ी शब्द है, झपट। झपट मैंने क्या, जैसे बाज पक्षी हाँ झपटा मारता है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे उनके पुरुषार्थ इतना तीव्र है। अच्छी तरह चले, क्यों नहीं चले। वहां भी चलता है, समाधि पुराण में जाते हैं आत्म जागृति से देह त्याग करते हैं वो नया देह धारण करने भी आत्म जागृति के साथ ही नया देह धारण करते हैं, वहां जागृति मिटती नहीं है, वहां जागृति बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी जागृति रह सकती है, बराबर रह सकती है। क्या आत्म जागृति को कोई अनुकूलता प्रतिकूलता का निमित्त से वो परे की चीज है, इससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे। छूट सकता है लेकिन छूटे उसका छूटे, जिसका छूटे इसका छूटे। हाँ वो कुछ बेंच ने वो बताया था कि हम लोगों का क्षोभ समय सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी छूटने वाला नहीं है। क्या हमारा संकेत छूटने वाला नहीं है? उन्होंने एक नया विशेषण दिया था, गुरुदेव दोहराते थे इस बात को कि ये जो शायक में चला जाएगा क्षोभ सम पलट करके शायक में, तो जोड़निक संकेत बोला उनको। क्या नया विशेषण दिया? शास्त्र में ऐसी बात नहीं मिले, जो ज्ञानी के मुख से निकलती है कहीं बात शास्त्र में मिले ही नहीं, ऐसी बात है। जोड़निक संकेत बोले वो, जुड़ जाएगा शायक में, जुड़ जाएगा वो, चला जाने वाला नहीं है ये, ऐसी बात है। और एक भाव में तो क्यों चला जाए, तो तीव्र पुरुष साथ में रहते हैं। आप हमारे साथ गुरुदेव श्री के पास चलेंगे, शाम को गुरुदेव बैठते थे ना, खाना खाते फिर थोड़ा घूमते थे, बाद बार बैठते थे, वो बोले कि आप जाइए। मैंने तो गुरुदेव को यहाँ बिठा लिया है भाव से तो गुरुदेव मेरे हृदय में है, फिर मुझे द्रव्य से नजदीक जाने के कोई अभी विकल्प नहीं है। क्या था कि वो शाम को फिर कभी खाना खाते, कभी नहीं भी खाते थे, उन दिनों में वो खाना नहीं भी खाते थे, तो फिर वो तो चर्चा तो पूरी हो जाती खाना खाने के समय, पहले पहले बहनों को तो रसोई बनानी होती है, तो इन दिनों में तो सब फिर खाना खाने के पहले घंटा भर पहले ही सबकी छुट्टी हो जाती चर्चा में से, वो खाना खावे तो खावे, नहीं खावे तो फिर अपना कमरा बंद करके बैठ जाते थे। ये भी अंगत बात लिखी है, तो इनके जो परिणमन के जो विलक्षण प्रकार के चिन्ह थे वो दिखाने के लिए तो बात सहज रूप से चली थी, वो संकलित की गई है। प्रश्न, अभी आप कौन से शास्त्र का वाचन करते हो? जैसे कि आप जिस बात जिस ढंग से बात करते हो ये पद्धति तो नियम सार की दिखती है। क्या पर्याय भी परद्रव्य है, प्रभाव है और हेय है? क्षायिक पर्याय भी परद्रव्यम प्रभावम हेयम इति, तो कहीं शास्त्र स्वाध्याय चलता हो इसकी असर रह गई हो और चर्चा में वो उस असर से कोई बात चलती है, क्या पूछने वाले में को जो अभिप्राय मन में था वो वही अभिप्राय था? क्या आप आजकल कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करते हो, मांचन करते हो? तो बताया कि शास्त्र मांचन की खास आदत ही नहीं रही, यानी शास्त्र तो बहुत कम पढ़ते थे वो, बहुत कुछ दिन सा कोई शास्त्र हाथ में लेते थे, पिछले दिन छोड़ करके बीच में शास्त्र पढ़ने की आदत ही बिल्कुल उनकी छूट गई थी। पिछले दिन कलकत्ता में कुछ 40 दिन स्वाध्याय किया था, उस दिन वो फिर घर पे भी शास्त्र पढ़ने लग गए थे, तो शास्त्र तो बहुत कई सालों तक तो ऐसे ही शास्त्र पढ़े रहे हैं, तो इस पर तो धूली भी लग गई थी, फिर वो सब साफ कर करके पढ़ने लगे। क्यों ऐसा, अभी इतने दिन नहीं पढ़ा, अब क्यों पढ़ने का चालू किया? तो कि क्या करे, लोग पूछते हैं शास्त्र में से, अध्याय करने में तो प्रश्न तो शास्त्र में से आता है, तो कहाँ कौन सी अपेक्षा चली है, आचार्यों ने कहाँ किस बात की है, किस प्रकार से उत्तर दिया है, किस प्रकार से बात चली है, आगे पीछे देखना पड़ता है। तो पिछले दिनों में उन्होंने शास्त्र पढ़ा फिर से, बीच में बिल्कुल शास्त्र पढ़ने की आदत ही छूट गई थी, निवृत्ति मिले तो अपने ध्यान में बैठ जावे। निवृत्ति का उपयोग शास्त्र पढ़ने में वो नहीं करते थे, बहुत साल ऐसे चल गए। तो पूछने वाले को तो मन में ये भी प्राय था कि ये दृष्टि प्रधान जो बातें कर रहे हैं, तो कोई शास्त्र की असर रह गई है, जो आजकल पढ़ते होंगे उसके असर के नीचे ये बात चलती होगी। तो उत्तर ही कोई दूसरा मिला कि शास्त्र, एक भी शास्त्र आजकल पढ़ने का नहीं बन रहा है, और मुझे एक क्षयोपशम भी बढ़ाना नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा उत्तर दिया है। क्या बहुत सोच समझ करके ये उत्तर दिया है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है आप क्यों नहीं शास्त्र पढ़ते हो ऐसा, क्योंकि वो तो शास्त्र पढ़ते हैं ऐसा समझ कर ही प्रश्नकार ने प्रश्न किया है। प्रश्नकार को ये पता नहीं कि ये शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो मैं शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ बात पूरी होगी, लेकिन क्यों नहीं पढ़ता हूँ ये जरूरत से ज्यादा उत्तर दे दिया है। तो उसमें कुछ मर्म है, वो मर्म ऐसा है कि सामान्यतया मुमुक्षु शास्त्र जब अधिक पढ़ता है, अधिक मैंने जरूरत से भी अधिक पढ़ता है, क्या
मर्यादा है, क्योंकि सीमा है पढ़ने,
हाँ पढ़ने की सीमा है क्या पढ़ने की भी कुछ सीमा है, कौन सी सीमा है, कि मुमुक्षु को चाहिए कि जितना अपना प्रयोजन है उतना पढ़े। क्या कितना पढ़ना चाहिए, कि जितना अपना प्रयोजन जहां है जैसा है उस विषय को स्वाध्याय में पढ़ना चाहिए, शास्त्र में पढ़ना चाहिए, सारा शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या, लेकिन अंदर में थोड़ा लोभ रहता है, क्या रहता है, लोभ रहता है कि थोड़ा क्षोभसम बढ़ता है, इससे क्या होता है शास्त्र अधिक पढ़ने से क्षोभसम भी अधिक बढ़ता है, ये सूक्ष्म लोभ रहता है। थोड़ा तलाश कर लेना ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाले को, ये रहता है, तो ये उनको नुकसान का कारण है। क्या क्षयोपशम बढ़ाने का जो भाव है वो बाह्य दृष्टि के अनुसार आता है, अंतर्दृष्टि वाले को क्षयोपशम बढ़ाने का भाव नहीं आता, उसको तो स्वरूप की एकाग्रता चाहिए, क्षयोपशम नहीं बढ़ाना है। तो इसलिए मार्मिक रूप से ये बात उत्तर से भी ज्यादा अधिक बता दी है कि शास्त्र पढ़ने की आदत नहीं और मुझे क्षयोपशम भी बढ़ाना नहीं है, इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले को क्षयोपशम बढ़ाना नहीं चाहिए, या क्षयोपशम बढ़ाने के दृष्टिकोण से शास्त्र अध्ययन होना नहीं चाहिए, ऐसी बात है। इसमें ऐसा है कि पहले नया कोई शास्त्र पढ़ में नहीं तो आदि से अंत तक आद्यांत पढ़ देवे, फिर उस वक्त ख्याल में लक्ष्य में रख लेवे कि मेरे हित की बात कहाँ कहाँ आती है, ये नोट करते जाएं या कोई उसके निशानी करते जाएं कि मुझे लागू पड़ने वाली बात इस शास्त्र में कहाँ है, कितनी है, कैसी कैसी है, फिर उस पर अपना जो जितना भी उद्यम है, पुरुषार्थ है, वो वहां लगाना चाहिए। अपना प्रयोजन छोड़ करके अप्रयोजन भूत बातों में शास्त्र की भी हुए तो उलझना नहीं चाहिए, इसमें नुकसान है। ऐसी बात है, क्या नुकसान है कि अप्रयोजन भूत बात के महत्व रहने से, इसकी महत्ता ही तब तो उसमें समय गुजरते हैं, तो उसकी महत्ता आने से प्रयोजन भूत विषय पर हमारा लक्ष्य नहीं जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। तो प्रयोजन की जो जो बात आएगी वहां ऊपर से चले जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे सामूहिक बात अलग होती है, व्यक्तिगत बात अलग होती है। सामूहिक स्वाध्याय में ऐसी काट छांट नहीं हो सकती, उसमें तो आद्यंत पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब अपना एकांत में स्वाध्याय हुए तब तो प्रयोजन भूत बात पर ही एकाग्र होना, वहां ही अपनी शक्ति का प्रयोग ज्यादा करना, ये होना चाहिए। अब आपका प्रश्न रहा कि सारा द्रव्यानुयोग प्रयोजन भूत है, तो सिद्धांत के समझदारी के लिए तो प्रयोजन भूत है। द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के हिसाब से तो सारा द्रव्यानुयोग प्रयोजन भूत है। लेकिन जब सिद्धांत हमारे समझ में आ जाता है तब अब हमारे हमको कौन से प्रयोजन, हमारी योग्यता में हमको कौन से प्रयोजन की बात है, उतनी बात को अलग छांटनी चाहिए। हाँ, उसमें भी क्या कि हमारी योग्यता, सामान्य योग्यता के अनुकूल हमें कौन कौन सी बातें हमें प्रयोजन में लागू पड़ती, हमारे प्रयोजन में काम में आने वाली है, उतनी बात हमें अलग छांटनी चाहिए। पर उसमें भी वर्तमान में हमारे जो परिणमन चलता है उसमें कौन सी बात प्रयोजन में आती है, वहां तक सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि प्रयोजन की चलनी चाहिए। जब भी कुछ काम होता है तो होता है, ऐसी बात है। तो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि तीक्ष्ण दृष्टि प्रयोजन की नहीं होती है तो फिर वैसे ही सब बात मोटे मोटे रूप में चल जाती है, और कहां प्रयोजन है कहां अप्रयोजन है कुछ ध्यान में नहीं रहता, और समय और आयु चला जाता है, ऐसा बनता है। तो ये प्रयोजन का विषय गुरुदेव ने लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में, और ये अपने परमागम सार में आई है, वो सब बात है। प्रयोजन वाली बात परमागम सार में जो है, नोट करना चाहे तो कर लो। परमागम सार में अनुमान नहीं करके फिर मैं परमागम सार में नहीं करके इंडेक्स में विषय इन्होंने हमारा नहीं ३३, ९३५ दो प्रयोजन के विषय में, और ९३७ ९३४ ९३५ ९३७ ये तीन गोल है, ९३३ भी है, ३३ ३४ ३५ ३३ चार बोल है प्रयोजन के विषय में। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर के प्रवचन में से लिया हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उन्होंने जो उतनी बात कह दी कि मुझे एक सूक्ष्म भी बढ़ाना नहीं है, एक इस बात पर विचक्षण को थोड़ा ये लगता है कि बात कुछ और है। ये
वासुदेव जय हो परम कृपा उसी कहान गुरुदेव जय हो परम कृपा उसी।